श्लोक मधुरम रसवद्वाची वस्तुन्यपि रसः स्थितः एन माद्यन्ति धीमन्तो मधुनेव मधुव्रताः। रस से प्रशस्त मधुर रस वाक में तथा अर्थ में स्थित होता है, जिससे बुद्धिमान लोग उसी प्रकार आह्लादित होते हैं जिस प्रकार पुष्प रस से मधुकर। आचार्य दंडी ने 51 से 68 श्लोक में माधुर्य नामक चौथे गुण का प्रतिपादन किया है। प्रकृति 91 श्लोक में माधुर्य का लक्षण देकर उसके असाधारण धर्म के अधिष्ठान के भेद के आधार पर माधुर्य के दो भेद बताए हैं। रसवत शब्द रसः अस्ति अस्मिन् विग्रह में रस शब्द से मतुप तद्धित प्रत्यय से निष्पन्न है। मतुप प्रत्यय प्रकृति की अधिकता तथा प्राशस्त्य को भी व्यक्त करता है। रस की प्रचुरता तथा उसके कारण प्रशस्तता रसवत में अंतर्निहित है। रस शब्द भी यहाँ पारिभाषिक श्रृंगारादि विशेष अर्थ में नहीं है, अपितु सामान्य आह्लाद अर्थ में है। अतः प्रचुर आह्लाद से प्रशस्त काव्य मधुर होता है। इस रस अर्थात आह्लाद के दो अधिष्ठान होते हैं, वाक अर्थात काव्य की घटक पदावली और उससे व्यवच्छिन्न अर्थ। इन दोनों अधिष्ठानों में स्थित रस से अर्थात आह्लाद से बुद्धिमान काव्य की समझ रखने वाले सहृदय उसी प्रकार मस्ती से झूम उठते हैं जिस प्रकार पुष्प रस से अपनी पिपासा शांत करने वाले भ्रमर पुष्प रस पाकर झूम उठते हैं। इस प्रकार माधुर्य गुण शब्दगत और अर्थगत दो प्रकार का होता है। श्लोक यया कयापि श्रुत्या यत्समानम् नुभूयते तद्रुपादी पदासक्ति सानुप्रासा रसावहा। जिस किसी भी प्रकार से सुनने में जो समान अनुभव किया जाता है उसके रूप वाले प्रथम पद से निकटता अनुप्रास सहित आनंददायी होती है। पदावली में रसावहता का हेतु अनुप्रास है, यह अगले दो श्लोक में उदाहरण सहित बताया है। शब्दगत माधुर्य की आधार पदावली के घटक तत्व वर्ण अक्षर शब्द एवं पद होते हैं। वर्ण का आधार तत्व उच्चारण में अपेक्षित स्थान आभ्यांतर और बाह्य प्रयत्न ह्रस्व दीर्घ आदि मात्रा भेद एवं वर्णों के शिक्षा शास्त्रोक्त अयह पिंडादि संयोग होते हैं। ये सब अक्षर एवं शब्दों को अधिष्ठान बनाकर पद में समाहित होते हैं तथा पद के माध्यम से पदावली में व्यक्त होते हैं। काव्य के श्रवण में इनमें से जिस किसी भी तत्व के कारण वर्णादि में समानता की अनुभूति होती है उस तत्व के सादृश्य वाले पदों की निकटता अनवच्छेदेन श्रूयमाणता अनुप्रास कहलाती है। यह सानुप्रासता काव्य में रस का निषेक करती है। इस प्रकार की रचना श्रुति सुभग होने के कारण श्रोता के हृदय में रस का संचार करती है। यह समान श्रुति ता पदावली के किसी अंश तक भी सीमित हो सकती है तो पद समुदाय व्यापिनी भी हो सकती है। रत्न श्री ज्ञान और तरुण वाचस्पति ने यहाँ समान पदासक्ति और अनुप्रास को पृथक पृथक माना है, पर यह उचित नहीं प्रतीत होता। अनुप्रास का ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले इस राजा ने जब से अनुप्रास का आधार श्रुति समानता यदि नहीं है तो क्या है। 55वें श्लोक में प्रोक्त वर्णानुवृत्ति अनुप्रास भी उसी का एक रूप है। दंडी का यह पद श्रुत्या के स्थान पर वृत्या पाठ के साथ अग्नि पुराण में अनुप्रास के प्रसंग में है। श्लोक एषा राजा यदा लक्ष्मीं प्राप्तवान ब्राह्मण प्रियः तदा प्रवृत्ति धर्मस्य लोकेऽस्मिन् नुत्सवो भवत्। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले अथवा ब्राह्मण के प्रिय इस राजा ने सबसे जब से राज्य लक्ष्मी को प्राप्त किया है तब से इस लोक में धर्म का उत्सव हो गया है। ऐसा राजा अभवत पद में यह माधुर्य गौणों द्वारा आदृत नहीं है किंतु उनको अनुप्रास प्रिय है। अनुप्रास के कारण प्रायः करके वैदर्भ मार्ग के लोगों को यह माधुर्य अभीष्ट है। समान श्रुति पदासक्ति अनुप्रास के दंडी प्रोक्त उदाहरण श्लोक 53 में लघु अक्षर दीर्घ या गुरु के मध्य में है तथा समान स्थानोच्चार्य दीर्घ अक्षर आसन्न पद में है। इसके अतिरिक्त मूर्धन्य श रा ताल बिजाय दंत या ल ओष्ठ मीम प्राप दंत्य तवान वर्ण स्थान श्रुति से समान है। इसी प्रकार आगे उत्तरार्ध में भी समझे, प्रथम पाद में असंयुक्त वर्ण है तो शेष पादों में संयुक्त वर्ण पर्याप्त तथा निकट है, अतः समान श्रुति पदासक्ति से जन्य अनुप्रास के कारण यह श्लोक श्रोताओं को आनंददायी हो गया है। श्लोक इति दम नादृतम गौणैर अनुप्रासस्तु तत्प्रियः अनुप्रासादापि प्रायो वैदर्भय रिदमिप्सितम्। किंतु गौण मार्ग के कवि तथा सहृदय जिस किसी श्रुति के कारण समान पदासक्ति से जन्य अनुप्रास को काव्य में विशेष शोभादायक नहीं मानते, यो अनुप्रास उन्हें प्रिय है अर्थात वे इसे सामान्य अलंकार मानते हैं, गुण विशेष अलंकार नहीं, किंतु वैदर्भ मार्ग के लोग समान श्रुति पदासक्ति जन्य अनुप्रास को विशेष अलंकार मानते हैं, सामान्य अनुप्रास को वे भी उतना महत्व नहीं देते, उसकी अपेक्षा वैदर्भ को यह समान श्रुति पदासक्ति जन्य अनुप्रास अधिक अभिष्ट है। श्लोक वर्णावृत्तिरनुप्रासः पादेषु च पूर्वानुभव संस्कार बोधिनी यद् दूरता। चरणों में और पदों में वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास है, अगर आवृत्त वर्ण की पिछले वर्ण के अनुभव श्रवण के संस्कार को जगाने वाली निकटता है तो अनुप्रास का विशेष स्वरूप बताने के बाद अब आचार्य दंडी अनुप्रास का सामान्य स्वरूप बता रहे हैं जो गौणों को प्रिय है। अनुप्रास के पूर्वोक्त लक्षण में वर्ण के स्थान प्रयत्न संयोग मात्रा आदि की समानता अभिष्ट थी, प्रकृति लक्षण में वर्ण की आवृत्ति असकृत प्रयोग अपेक्षित है। वैदर्भी भी मत अनुप्रास में भिन्न भिन्न वर्णों के स्थान आदि में से किसी की भी समानता से प्रयोग अपेक्षित है, यह इन दोनों में मुख्य अंतर है। एक या एकाधिक वर्ण की यह आवृत्ति निरंतर होवे यह आवश्यक नहीं है, यह दो प्रकार से हो सकती है, पद्य काव्य में भिन्न भिन्न पादों में भी हो सकती है तो भिन्न भिन्न पदों में भी, गद्य काव्य में यह एक ही पद में भी हो सकती है तो भिन्न भिन्न पदों में भी। भिन्न भिन्न पदों या पदों में आवर्तनीय वर्णों के लिए एक बात अनिवार्यतया आवश्यक है, वर्ण के प्रथम और आवृत्त प्रयोगों में दूरी इतनी ही हो सकती है जिससे कि पूर्व वर्ण के श्रवण का संस्कार द्वितीय वर्ण के श्रवण तक समाप्त न हो जाए। पूर्व वर्ण के श्रवण का संस्कार द्वितीय वर्ण के श्रवण से जागृत हो जाना चाहिए।